پھر فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. لو جی ساری انسان کی کہانی ایک آیت کے اندر آ گئی. اسی سے کس سے ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ زمین کی بات ہو رہی تھی نا. زمین سے ہم نے نکال لیا, ہم نے تم کو پیدا کیا, تخلیق کیا, خلقنا ہم نے, خلق پیدا کیا, نہ ہم نے کم تم کو, تینوں چیزیں آ گئی اس میں, فائل بھی آ گیا, مفعول بھی آ گیا, فعل بھی آ گیا. یہی تو عربک کی بیوٹی ہے, ایک لفظ کے اندر سب کچھ آ گیا. اور اردو میں بولنے لگے تو کتنے سارے الفاظ, ہم نے تم کو پیدا کیا. تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اس میں سے, کس میں سے, اسی زمین سے. تو واقعی آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ سب کے ہیں وہ اسی مٹی سے تو پیدا ہوئے. نمبر ٹو یہ کہ اگر کوئی کہے کہ میں تو نہیں نا مٹی سے پیدا ہوں, تو جو نطفہ جس سے انسان بنتا ہے وہ نطفہ بھی تو انہی غذاؤں سے پیدا ہوتا ہے جو اسی زمین سے لی گئی. اگر انسان گوشت کھاتا ہے تو جس جانور کا کوئی کھاتا ہے وہ بھی تو اسی زمین سے چڑ چک رہا ہے, اس کا گوشت بھی تو اسی زمین کے گھاس پھوس سے ہی بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے؟ تو وہ نطفہ بھی اسی سے بنا, اس مٹی سے. کہتے ہیں کہ جس مٹی سے انسان پیدا ہوتا ہے اسی کے اندر جاتا ہے. تو پیدا کیا اور فیہا نعیدکم, اس میں ہم تم کو لوٹائیں گے. یعنی انسان کو دیکھیں تو وہ اسی مٹی کے اندر ہی چلا جاتا ہے, اسی میں دفن ہوتا ہے. اب چاہے وہ سمندر میں بھی ڈوبے تو ہے تو اسی زمین کے اندر ہی, کسی جانور کے پیٹ میں چلا جائے تب بھی وہ جانور بھی مر مٹ کے اسی زمین کے اندر ہوگا. منہا نخرجکم تارتا اخرى, اور اسی سے ہم تم کو نکالیں گے ایک دوسری مرتبہ بھی, اس سے کھڑا کریں گے, اسی سے انسان اگیں گے. جب اللہ تعالی قیامت کو برپا فرمائے گا تو اسی سے قبریں پھٹیں گی اور انسان نکلیں گے. تو اس انسان کی کہانی تو اسی مٹی کی ہے, اور یہی اس کا وجود ہے. اس مٹی کے وجود پہ کتنی محنت کرتا ہے نا, کتنا اس کو سنوارتا ہے, پھر اس کے اندر ہی چلا جاتا ہے اور اسی کے اندر سے اٹھ جائے گا. یہی اس کی کہانی ہے پوری. اور جب قبر کی مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو بعض دفعہ یہی آیت لوگ پڑھتے ہیں, اس لیے کہ ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے. لیکن جتنی احادیث بھی اس سے متعلق ہیں یہ آیت پڑھنے سے, اس سند انصاری ضعیف ہے. صرف ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں, وہ صحیح حدیث ہے, اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھا اور پھر جب قبر کی طرف تشریف لائے تو اس کے سر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ مٹی ڈالی. یہ تین مرتبہ مٹی ڈالنے کی تو حدیث موجود ہے, لیکن یہ آیت پڑھنا ساتھ یہ والی جو احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں سنتن. تو اللہ تعالیٰ نے یاد کرا دیا کہ مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے نا, اسی مٹی کے اندر اس کو چلے جانا اور اسی میں سے اس کو نکلنا ہے. تو انسان اپنی اوقات کو یاد رکھے کہ وہ کیا چیز ہے. اور کوئی ایسا, کوئی چاہے کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو یا کتنا بھی بڑا خدائی کا دعوے دار ہو, آخر کو وہ مر کے اسی میں گیا, ٹھیک. کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی حیثیت کیا, کیا چیز ہے وہ. مٹی صرف مٹی کا پتلا ہے, مٹی میں تجھے جانا. تو پھر تکبر کہاں سے آ گیا, بڑائی کہاں سے آ گئی, یہ احساس کہاں سے آ گیا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا, اور البتہ تحقیق دکھائی ہم نے ہو اس کو, آيَاتِنَا اپنی نشانی, کلہا ساری کی ساری. کس کو؟ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی؟ فرعون کو. فکذب و ابا, اس کو کہا بھی تھا کہ آیت 48 میں کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا تھا, ان العذاب علی من کذب و تولی, عذاب اس کے اوپر ہے جو کہ جھٹلائے اور منہ موڑے, اور اس نے یہی کیا, جھٹلایا اور انکار کیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو ساری ہی نشانیاں دکھا دی. ساری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر نشانی جو دنیا جہان کی ہے وہ ہر نشانی اس کو دکھا دی, یہ نہیں مطلب. कुल्ला हंसे मतलब ये, जैसे कि आप कहते हैं ना, मैंने तो सारी दुनिया देख ली है, उसका मतलब ये तो नहीं कि आप सारी दुनिया में चप्पा चप्पा घूम के आ गई है, बल्कि मतलब क्या है कि सर बहुत सारी चीजें मैंने देख ली हैं। तो आयाति ना कुल्ला का मतलब है कि बहुत सारी निशानियां दिखाई, देखे क्या नहीं उसने देख लिया था, ये असा को सांप बनते हुए देख लिया उसने, यदि बेहदा देख लिया उसने, ये जो इनके ऊपर सारे अजाब आए थे, जुओं का, मेंढकों का, टिड्डियों का, वो सब देख लिए, समुद्र का फटना देख लिया, मूसा अलैहि सलाम के आगे जब समुद्र फटा था वो भी इसने देख लिया, फिर कितनी सारी निशानियां इसने देखी, कहत साली इनके ऊपर आ गई, फलों की कमी वगैरह हो गई, वो भी इसने देख ली थी, लेकिन फिर भी माना नहीं। जिसे नहीं मानना होता वो कोई निशानी देख के भी नहीं मानता। ये सूरह यूसुफ में हम पढ़ चुके हैं ना, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कितनी निशानियां आसमानों जमीन में जिनमें ये रोज चलते फिरते, फिर भी गौर फिक्र नहीं करते। और यहां से हमें ये पता चलता है, जो अल्लाह की आयात का इनकार करना है ना, चाहे वो आयात कुरान की है, चाहे वो कायनात में बिखरी हुई निशानी है, कि मैं नहीं मानती कि ये अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि ये सूरज को अल्लाह ने पैदा किया, या मैं नहीं मानती कि अस्तगफिरुल्लाह के माज अल्लाह के ये हम कहीं के आसमान को अल्लाह ने पैदा किया, ये मैं नहीं मानती, ये नहीं मैं मानती। तो ये चीजें, इनका इनकार करना, ये भी निशानी है, ये कायनात की निशानी है। और एक आयात है कुरान की, इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुरान की आयात को, आयत का माना क्या होता है, निशानी, कुरान की आयात को जुमले नहीं कह सकते, वर्सेस नहीं कह सकते, इसे इंग्लिश में भी नहीं वर्स कहना चाहिए, आया ही कहना चाहिए। तो पास जो वर्सेस कह देते हैं, वर्सेस पोएट्री में हो सकते हैं, लेकिन ये कुरान में थोड़ी है, वो तो इसका माना ही नहीं बयान कर सकता, इसीलिए इनको आयत कहा गया, क्योंकि ये निशानी है, जुमला निशानी नहीं होता, फिकरा नहीं है, ये जुमला नहीं है, ये आयात है। तो कायनात में भी आयात फैली हुई है और कुरान में भी आयात है। तो जो इनसे इनकार करता है ना, जो इनको नहीं मानता, उसका जो रवैया है वो फिरौनी रवैया है, ये फिरौनी तर्ज अमल है, ठीक है। जो फिर जाहिर है जैसे रवैया इख्तियार करेगा वो उसके पीछे होगा ना कयामत के दिन, जिसकी कॉपी करेगा उसी के साथ होगा। काला उसने कहा अजीता ना नहीं तुखरी जाना भी ना अर्दी ना, हालांकि मूसा अलैहि सलाम ने तो ये कहा भी नहीं कि तू आया हमारे पास कि हमारी जमीन से हमें निकाल दे। अच्छा, अब ना कहा हमें हमारी जमीन से, हमें हमारी जमीन से, वरना फिरौन तो इतना मुतकब्बिर था, वो तो कहता था मैं मेरे से करने से, उसने हम क्यों कहा, इसलिए उसने इस दफा हम कहा क्योंकि वो सारों को साथ मिलाना चाहता था कि देखो मेरा ये दुश्मन नहीं है मूसा, ये तो हम सबका ही दुश्मन है, ये तो हम सबको निकालने आया। और इस तरह के टैक्टिक्स होते हैं ऐसे लोगों के, जो लोगों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, कि वो कहते हैं तुम्हारा नुकसान है ना इसमें, भाई हमें क्या है, हमारा तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो जाएगा भाई, तो हम सबको जमीन से निकालने आया है। हालांकि उन्होंने कोई कहा था कि तुम यहां से निकल जाओ, उन्होंने तो कहा बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो, इसको तो निकलने को कहा ही नहीं, लेकिन देखो कैसे उसने बात को बदला और किस तरह से उसका अपना ही माना बना लिया कोई और भी, सेहरी का या मूसा, अपने जादू के जोर से तू हमें यहां से निकालने आया है हमारी जमीन से। अब जितने सुनने वाले हैं उनके जहन में क्या है, इसको भी कहते हैं ना कि जिसको कहते हैं ब्रेन वॉशिंग करना, लोगों की ब्रेन वॉशिंग करना, इस तरह के जो सुनने वाला होगा कहेगा अच्छा वाकई ये हमें निकालने आ गए, और जादू के साथ जादू कर देगा, हम सारे यहां से निकल जाएंगे, हम इस जो हमारी जमीन हमसे छिन जाएगी, हमारा मुल्क हमसे चला जाएगा, हमारी आजादी चली जाएगी। फलनातीयन्नक बिस्सिह्र मिथलिही, तो बस अलबत्ता जरूर हम भी लाएंगे इसके जैसा जादू, जैसा तू लेकर आया इस तरह का हम भी लेकर आएंगे, फजाल बईना ना बईना का माओ ऐदन, तो बना ले कोई मुकरर कर ले, ठीक है कोई फिक्स कर ले हमारे और अपने दरमियान कोई वादे की जगह, वादे का वक्त, ला नुखलिफुहु, नहीं हम खिलाफ करेंगे इससे, नाहनु हम वला अंता, और ना तुम, मकानन सुवा, एक जगह जो बराबर की हो सीधी हो। अब क्या कह रहा है कि ठीक है तुम हमें अपने जादू के जोर से निकालना चाहते, तो हम भी कोई जादू ले आते तुम्हारे जैसा ही कोई जादू, बड़ा जादू करके दिखा रहे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने निशानियां दिखाई थी ना, और ये एक दफा भी नहीं हो गया याद रखे कि अभी मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं और वहां पे ये सारा कुछ, ये जाहिर है इतना अरसा तबलीग करते रहे, उसने ये सारी निशानियां देख ली, उसने ये सांप बनते हुए देख लिया असा को, उसने हाथ उनका ग्लोइंग होते देख लिया, उसने ये सारी निशानी देख ली, उसने उसके बाद कहा बस तू हमें पता है तू असल में ये बात है हमारी जमीन पे कब्जा करना चाहते हो, हमें यहाँ से निकालना चाहते हो, और तुम्हारे पास जादू है, इसको भी जादू कह दिया। और उस जमाने में जादू का बड़ा ही जोर था, तो कहता हम भी ले आएंगे जादू, ठीक है जादू ही लाना है ना, तो तुम एक कोई जगह मुकर्रर कर लो। नहीं उनको ऐसे कहा कि जैसे कि मैं, जैसे होता है ना कि दूसरा तो कुछ भी चीज नहीं है, तो ठीक है तुम करो मुकर्रर, हम देख लेंगे तुम्हें, और हम तो कोई खिलाफ नहीं करेंगे, और ना तुम करना, और अपना पहले कहा इसलिए कि आप अपने आप को बड़ी चीज समझता है, तो अपने बड़ाई दिखाने के लिए कि हम तो नहीं भागेंगे इससे, और तुम ना भागना फिर। और एक जगह हमवार क्यों, या सुवा का मतलब ये भी है कि फ्लैट जगह हो, क्योंकि फ्लैट जगह होगी तो सारा कोई जो भी होगा वो देखा जा सकेगा, सब देखेंगे, हम भी अपना जादू ले आते हैं तुम भी अपना जादू ले आओ, तो सब देखेंगे। दूसरा एक दरमियान की जगह, दरमियान की जगह ना तुम्हारे से भी ज्यादा दूर ना हो हमारे से भी। मजीना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर वक्त मुकर्रर तुम्हारा जो है वो यौम जीना का रख देते हैं। वो जीना का मतलब ये है कि खूबसूरती का दिन, कहते हैं कि वहां पे कोई जश्न होता था या कोई उनका ईद का दिन था, कोई फेस्टिवल था जिसमें बड़ी रंगीनियां रंगिया, वो पता है जश्न वगैरह में ये बत्तियां ये झंडियां ये सब चीजें होती हैं, तो जीना मतलब खूबसूरती का दिन, कि वो हम रख लेते हैं। जब उसकी क्या हिकमत है, उस दिन फिर सारे लोग आ भी सकेंगे, जाहिर है छुट्टी का दिन होता है, फरागत होती है, जश्न होता है, लोगों को ऐसी चीजें देखने का भी शौक होता है कि चलो देखते हैं जाके। नासु दोहा, और हाँ इकट्ठे किए जाएं लोग दोहा के वक्त, टाइम भी बता दी मैंने आपको, बताया ना मौईदा के अंदर जगह भी और टाइम भी दोनों होते हैं, तो उसने कहा था जगह और टाइम बता दो, तो जगह यौम जीना, वो तो जगह तो नहीं है लेकिन इसका मतलब है कि वो कोई जश्न किसी जगह पे मनाया जाता था, तो बताया सबको कि फला मैदान जो है वो वहां पे ये सारा होता है, मतलब कोई स्टेडियम आप समझ लें, और वहां टाइमिंग क्या दी दोहा, इसलिए कि अगर दोहा का वक्त होता है जब सूरज जरा चढ़ जाता है 9 साढ़े 9 का वक्त, बिल्कुल भी दोपहर हो जाए तो गर्मी हो जाती है, अगर बिल्कुल ही मुंह अंधेरे बुला लिया तो नजर क्या आएगा सबको। अच्छा अब आप देखेंगे ये मुकाबला फिरौन के साथ है, कोई छोटी बात नहीं। फतवल्ला फिरौन, तो पलटा फिरौन। अच्छा फिर अब ये मजलिस बर्खास्त हो गई, फिरौन अब गया, फजमा कैदा हो सुमाता, फिर उसने इकट्ठी की अपनी चालें अपने हथकंडे, यानी अपने जादूगर बुलाए जगह जगह से, हम सूरह आराफ में इसकी पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं। सुमाता फिर आ गया, काल अला मूसा, अब जब सारे जादूगर इकट्ठे हो गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको एक तकरीर की, उनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वही लाको, तुम्हारा जिसको कहते हैं तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम हलाकत हो तुम्हारे पर, तुम अफसोस है तुम्हारे पर, ला तफ्तर अल्लाह का दिवन, अल्लाह पे झूठ तो ना बांधो, और युस हिता कुम भी आजाद, तो वो फना कर देगा तुमको आजाद के साथ, वो ऐसा तुम्हें खत्म करके देगा, जड़ से उखाड़ देगा, अल्लाह पे झूठ ना मानो। कैसे अल्लाह के ऊपर झूठ मानना था, क्योंकि ये जो जादू है ये तो झूठ है, झूठ है ना, अल्लाह पर बोहतान है। वकद ख्वाब मन इफ्तारा, और जो घर लेता है अल्लाह के ऊपर झूठ वो नामुराद होता है, कभी ये कामयाब नहीं हो सकता। जब उन्होंने ये बात सुनी तो फतनाजाओ अमरहम बैनहुम, तो वो आपस में झगड़ने लगे। अब उनके अंदर क्या झगड़ा हो गया जादूगरों के दरमियान, कि वो कहने लगे कि बाज ने जो डर गए मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुन के, कि देखो अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा अगर तुम इस तरह से ये मेरे मुकाबले में अल्लाह के मौजों के आगे जादू लेकर आ जाते। तो उन्होंने कहा कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हुए तो क्या होगा हमारा, हमें लगता है इसका मुकाबला नहीं करना चाहिए। कुछ दूसरे थे उन्होंने कहा नहीं 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 कुछ नहीं होता, कुछ नहीं ये ऐसे ही जादूगर ही है, वो कहते हैं जादूगर तो नहीं लगता, जादूगर तो ऐसी बातें नहीं करता, ये ना हम इसको साथ मुकाबला करें तो हमें ही कुछ नुकसान हो जाए। तो अब ना ये उनके दरमियान एक झगड़ा सा खड़ा हो गया, वह असर रुन नजवा, और उन्होंने चुपके चुपके सरगोशियां शुरू कर दी, यानी अब क्या करते हैं, एक तरफ फिरौन है, फिरौन के सामने तो नहीं जाकर कह सकते कि ये तो नहीं कि ये सच्चा है या कुछ ऐसी बात नहीं कर सकते, और फिर लोग भी ना कहीं सुन लें, लोगों ने अगर सुन लिया तो क्या होगा। तो बड़ी राजदारी से उन्होंने ना आपस में बातें की, लेकिन उनके अंदर एक शक पड़ गया था। कालू, उन्होंने कहा फिर आपस में सरगोशियां करते हुए कहा, इन हादानी लसाहिरानी, हम लोगों को ये कहेंगे जाके कि ये दोनों जो है ना ये जादूगर, यूरीदानी अन युखरिजाकुम मिन अर्दिकुम, कि ये चाहते हैं कि तुम्हें निकाल दें जमीन से तुम्हारी, बिसिहरिहिमा अपने जादू से, और क्या चाहते हैं। अब ये बात एक समझने की, ये तो पहले भी उसने भी कहा फिरौन ने कि ये तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकालना चाहते, तो हम भी ये कहेंगे ये बस दोनों जादूगर हैं, हमें पता ही है जादूगर, तो आपस में प्लानिंग कर रहे हैं वो। वयदहब बितरीकतिकुमुल मुसला, तुम्हारा मिसाली तरीका तुमसे ले जाना चाहते हैं, तुम्हारा जो इतना जबरदस्त कल्चर, तुम्हारा वे ऑफ लाइफ, तरीका तुम्हारा मतलब तुम्हारा जो वे ऑफ लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, ये तुमसे ले जाना चाहते हैं, को तुम्हें इससे हटा देना चाहते हैं। अब देखिए ना, ये बात तो सही है कि फिरौनियों का जो लाइफ स्टाइल था और जो इनका कल्चर और जो इनके दुनिया के अंदर एक डंका बजता था, उसका अंदाजा आप इससे करें कि बाद वाले बादशाह भी उसकी तरह के मॉन्यूमेंट्स, उस तरह के महलात बनाने की कोशिशें करते रहे इवन आज तक। हालांकि फिरौन है, फिरौनी तहजीब कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि वो ही मॉन्यूमेंट्स के छोटे छोटे वो क्या उसको कहते हैं, जो मॉडल्स होते हैं वो रखे होते हैं, वो बेच रहे होते हैं, और जो उसकी ममीज हैं और जो उनके वहां के वो आसार उनके फिरौनी फिरौनी तहजीब के हैं, वो आज भी बिकते भी हैं। लोग बड़ा इस चीज को समझते हैं कि ये फेरोज, द फेरोज कुक, बड़ी बात समझते हैं, हालांकि वो तो अल्लाह के अजाब के अंदर गर्क हुआ बंदा था और उसके साथ वाले भी जो उसकी कौम थी, लेकिन आज भी लोगों के दिलों के अंदर उसकी मरूबियत और उस जमाने के उनके लाइफ स्टाइल और उनकी चीजों की मरूबियत आज भी है, तो सोचे उस जमाने में क्या होगी। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा तो लाइफ स्टाइल इतना मिसाली, इतना एग्जाम्पलरी है, इतना दुनिया में तुम्हारी शानो शौकत है, ये बस चाहते हैं कि सारा तुम्हारा ये ले जाए। कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 20 साल इनमें तबलीग की थी, बाज रिवायात में आता 20 साल, और उनके अंदर सिर्फ यही था कि तौहीद का दर्स देते थे और कह रहे थे बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो, आजाद कर। और हालांकि वो सिर्फ 10% आबादी थी इनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज को भी इतना बड़ा मसला बना लिया और तौहीद की दावत को अपने लिए खतरा समझ लिया। इसलिए कि जहां तौहीद का दर्स दिया जाए ना, वहां अल्लाह की हुक्मरानी है, वहां फिरौनी निजाम नहीं चल सकता, वहां शिर्क का निजाम नहीं चल सकता, वहां जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। और ये तो जुल्म के ऊपर ही खड़ी हुई एम्पायर थी, शेर और जुल्म, वो तो खुद अपने आप को खुदा कहता था और जुल्म की उसने इंतहाई की नहीं थी। और जब भी याद रखें, जब भी लोग इस तरह के जाबिर लोग होते हैं और ऐसे लोग होते हैं ना, और उनकी हुकूमतों को खतरा होता है, तो वो ये नहीं कहते कि हमारी हुकूमत को खतरा है, उस तरह से थोड़ी कोई मानेगा। वो अवाम को कैसे साथ मिलाते, तुम्हारे मुल्क को खतरा है, मिल्लत को खतरा है, कौम को खतरा हो गया। अब वो सारे सोचते हैं हमारी कौम को खतरा हो गया, अच्छा भाई वो उनके इकतदार को खतरा होता है, यहाँ पे फिरौन के इकतदार को खतरा था, और उसने कह दिया कि हमारा तो मिसाली निजाम जिंदगी हमसे छीन लेंगे, हम इतनी शानदार तहजीब हैं, हमारी सकाफत ऐसी है, और ये छीनने के लिए आ गए हैं, खत्म करके रख देंगे सब, जिस जिस जो हमने इतनी उससे मेहनत से बनाया वो सब खत्म कर देंगे, ये कौमी मफाद का मसला है, सब खड़े हो जाओ, फाजमियों का ईदा कुम, इकट्ठी कर लो तुम अपनी सारी तदबीरें, जमा हो जाओ, सो तू सफा, फिर अता याती से है, आओ सफा, सफ दर सफ होके, यानी ऐसे, यानी इसका मुकाबला करो मूसा का कि सफ दर सफ, जिससे सफों में आने से ना एक रोग पैदा होता है। तो अब ऐसी कोई बात ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या बना के रख दिया। मैंने आपको बताया ना, जैसे आज ये भी देखे, हजारों साल पहले भी वही बातें थी और आज भी वही बातें हैं। आज भी जो भी हुकूमतें अपने आप को एस्टेब्लिश रखना चाहती हैं और वो सोचती हैं कि हमें खतरा हो रहा है, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। तो उसने कहा वक़द अफलह अल्यौम मन इस्तअला, आज के दिन कामयाब वही होगा जो गालेबाज है, जो इनको हरा देना वही कामयाब होगा। अल्लाह अकबर, सदियों से वही बातें हो रही हैं। कालू या मूसा, उन्होंने कहा ए मूसा, ये जादूगरों ने, आप कहा अब मैदान खुल गया, अब पता नहीं वो गए, उन्होंने कुछ सोच विचार की, झगड़ा किया आपस के अंदर, फिर बातें की, फिर उन्होंने कहा कि हम ऐसी एक स्कीम बनाते हैं कि लोगों को ये हम कहेंगे, फिर बाहर आए, फिर फिरौन ने उनको कहा भाई जमा होके दिल जमी के साथ लड़ना, देख लो तुम्हारा ये, तुम्हें खत्म करने आए, इस जमीन से निकालने के लिए आया, तो ये सारी तहजीब को मिटा के रख देंगे ये दोनों, और सफ दर सफ होके जाना, बस आज कामयाब वही है जो गालिब आ जाएगा, बस तुमने गलबा पाना है। अब वो आए मैदान में, उन्होंने कहा मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकुना अव्वला मन अल्का, क्या आप डालेंगे या हम डालें पहले, अपना यानी जादू जो है हम डालें या आप डालेंगे। अच्छा बाज तफसीरों में ना बड़ी दिलचस्प बात लिखी हुई है कि वो कहते हैं कि जो ये जादूगर थे उनका अदब देखें, जो उन्होंने मूसा अलैहि सलाम के आगे अदब दिखाया ना कि मूसा आप डालेंगे हम, अब आगे कहते हैं हम ही डालेंगे, हम बड़ी चीज है, ऐसे नहीं आप डालेंगे या हम डालें, कहते हैं उनका जो अदब नबुवत के सामने था, इस अदब की वजह से ही अल्लाह ताला ने उनको पता नहीं हिदायत दे दी, कि यानी तकबर नहीं था ना उनके अंदर। अच्छा काला बल अलकू, मूसा अलैहि सलाम अब मैदान में खड़े हुए हैं, फरमाया तुम डाल दो। फाइदा हिबालुहुम वअसीयुहुम युखय्यलु इलैह, अच्छा अब जो उनकी रस्सियां थी और लाठियां थी वो ख्याल जाता था इसकी तरफ, मिन सेहरीहिम उनके जादू की वजह से, अन्ना तस आके वो दौड़ रही हैं। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि वो सांप बन गए, लेकिन उनको नजर ऐसी आ रहा था कि ये सांप बन गए। एक बात जहन में रखिएगा, जो जादूगर होता है ना वो किसी चीज की माहियत को नहीं बदल सकता, यानी उसकी फॉर्म को चेंज नहीं कर सकता, मतलब ना कि किसी को बंदर बना दिया, ऐसे नहीं कर सकता। हाँ ये जरूर कर सकता कि किसी को बंदर नजर आने लगे, वो है इंसान लेकिन उसको नजर ये आता कि ये बंदर, तो इसको कहते हैं आसाब के ऊपर असर करना, ये भी जादू की एक किस्म होती। अब थी वो रस्सियां और लाठियां ही थी, मगर निगाहों पे जब जादू कर दिया ना तो नजर में क्या आ रहा है कि ये सांप है जो हिल रहे हैं दौड़ रहे हैं, अब पूरे मैदान में सांप दौड़। बाद रिवायत में आता है 72 जादूगर थे, बाद में आता है हजारों जादूगर थे, इतने जादूगर और कितनी रस्सियां और लाठियां लाए होंगे, क्योंकि जाहिर है फिरौन ने उनको जब तैयारी कराई है उनको बताया कि भाई कि तुमने किस चीज का मुकाबला करना है, उन्होंने पूछा ही होगा ना, तो इसने यही बताया कि वो आसा से सांप बनाते हैं, उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है सांप ही बनाने हैं ना, वो ले आए उन्होंने रस्सियां और लाठियां डाली, वो ऐसे लोगों को जैसे हिप्नोटाइज करना होता है ना, इस तरह उनको नजर आने शुरू किया कि ये सांप ही है, इवन मूसा अलैहि सलाम को भी, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया युखय्यलु इलैह, ख्याल जाता था इस तरफ, यानी ये सिर्फ नजरों का धोखा था, असलियत नहीं थी, असल में सांप नहीं थे। तो एक ये जादू की फॉर्म है, दूसरा जादू का तरीका वो होता है जो जिन्नात के जरिए किया जाता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है, और उसमें जादूगर शयातीन जिन्नात के साथ मिल जाते हैं या उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं, और फिर वो शयातीन ही जो जिन्नों में से होते हैं वो इनको फायदा देते हैं, लेकिन इसके लिए इन जादूगरों को उन शयातीन को राजी करना पड़ता है, उनके साथ दोस्ती करने के लिए उनके ऐसे कुछ काम करने पड़ते हैं जिससे वो खुश हो जाए, तभी वो दोस्ती करेंगे ना, तो वो फिर इतने गलीज काम, इतने ग्रोस काम है कि अगर आप सुन भी लेना तो आप वॉमिट कर देंगे, इतने गंदे काम कराते हैं इंसानों से, ये करो ये करो ये करो, तो जब वो अरसा दराज तक ये काम करते हैं ना, जैसे गंदे रहना, नहाना ही नहीं, गंदे रह के वो सारे काम करते हैं, तो फिर वो जो अजाजील होता है, जो जो शैतान का नाम है अजाजील, वो फिर बाकायदा इसके नाम के वजीफे भी करते हैं, इसके नाम को पुकारते हैं, तो जब अजाजील को ये यकीन आ जाता है ना कि बस ये मेरा ही बंदा बन गया, अब ये मेरा है, तब वो उनकी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। फिर ये उसके जरिए जादू करते हैं, तो वो कहते हैं ना जिन्नात कब्जे में है और उससे वो हो रहे हैं, जादू कर रहे हैं, ये सारी ये इस तरह की चीजें। उन्होंने पीछे पीछे बहुत चिल्ले काटे होते हैं इस तरह की चीजें करके, ऐसे ही वो काबू आ जाते हैं, ऐसे नहीं वो किसी के पीछे लग जाते। तो अस्तगफिरुल्लाह, इसीलिए जादू की सजा भी, जादूगर की सजा ये है कत्ल कर देना उसको। तो ये जो थे ना, इन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाल दी। अब वो ऐसे दौड़ने शुरू हो गए, पूरे मैदान में दौड़ है। फाउजा सफी नफसी खीफत मूसा, तो छुपाया अपने दिल में खौफ मूसा अलैहि सलाम ने। मूसा अलैहि सलाम को खौफ आया इस देख के, एक तो ये वैसे ही खौफ आया कि इतने सारे सांप बन गए, ये खौफ आया। दूसरा नंबर टू, दूसरा खौफ ये आया कि अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरा सही है कि इनका सही है, इनके भी सांप बने हुए मेरा वाले। अब मूसा अलैहि सलाम को क्या पता कि मेरा, जब उन्होंने तो सिर्फ असा को सांप बनते हुए देखा ना, उनको ये तो नहीं पता कि इसके बाद ये क्या करेगा जो मेरा वाला सांप है। वो कहते हैं लोगों को कैसे पता चलेगा कि किसकी बात सच्ची है, अब क्या होगा, इस वजह से खौफ खाए। तो इसका मतलब ये हमें समझ आता है ना कि जो मोजा होता है वो खालिसतन अल्लाह की तरफ से होता है, इवन नबी के हाथ में भी कुछ नहीं होता, और नबी को भी नहीं पता होता कि इसकी नौयत क्या है, ना ही उसकी कोई मर्जी होती है। तो एक तो तभी खौफ जो मैंने आपको बताया कि उसकी वजह से भी हो सकता है, दूसरा ये भी कि लोगों को कैसे पता चलेगा। मूसा अलैहि सलाम का भी आसा है, उन्होंने भी उससे आसा से सांप बना लिया, मूसा अलैहि सलाम भी बना लेंगे, वो कहेंगे ये कौन सा कोई ऐसी बड़ी बात है, उनको क्या पता चलेगा किसकी बात सच्ची है। अल्लाह, और तभी खौफ अंबिया में भी हो सकता है। कुलना, अल्लाह ताला ने वही की मूसा अलैहि सलाम को, ला तखफ, आप मत डरे, इन्नका अंतल आला, आप ही गालिब होंगे, वा अल्की माफी यमीनी का, और डाल दें जो आपके दाएं हाथ में, तलकफ मा सनाओ, निगल जाएगा जो उन्होंने बनाया। अब देखिए ना, आप स्ट्रेस की एक इंतहा देखेंगे, एक अंदर ही अंदर घबराहट महसूस हुई, तो इससे पता चलता है कि देखें ये चीज भी एक इंसान के साथ नेचुरल है ऐसे हालात में, लेकिन फिर अल्लाह की मदद जब आती है ना तो इंसान फिर स्ट्रांग हो जाता है। फिर इंसान जो अपने अंदर एक घबराहट की कैफियत है वो दूर हो जाती है। तो ये आसान नहीं था, इसीलिए मैंने आपको कहा वहां पे जाके खुद को, अपने आप को सोचे कि एक बंदा खड़ा हुआ और एक तरफ मुकाबले में इतने लोग आए हैं और उनकी सारी सांप बन गए, सारे सांप घूम रहे, एक मैं सांप बना दूंगा तो क्या ये क्या फर्क पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे, तो एक ही सांप है और इनको देखो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया आप डाल दें, तलकफ मा सनाउ, वो निकल जाएगा जो उन्होंने बनाया। इन्नमा सनाउ कैदु साहिर, बेशक उन्होंने बनाई है चाल एक जादूगर की, इनकी जो इन्होंने जो बनाई है ना ये सब, ये सिर्फ चालें हैं जादूगरों की, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं। और फिर बहुत बड़ी बात, वला युफ्लिहु साहिरु हैथु अता, और जादूगर कभी कामयाबी नहीं हासिल कर सकता जहां से भी आ जाए। इसीलिए इस पार्ट को आयत के ना, बाज दफा लोगों के ऊपर जादू होता है या कुछ है तो कोई पढ़ने को कहते हैं कि ये आप पढ़ें, वला युफ्लिहु साहिरु हैथु अता, साहिर कहीं से भी आ जाए कामयाब नहीं होगा। इंसान का खौफ भी जाता रहता है, इंसान अपने आप को भी कहे कि जादू ठीक है, जादू बरहक है, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा जादू का असर होता है जो जितना कमजोर होता है। तो जादूगर का जादू की कोई हैसियत नहीं है, ये अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर नहीं कुछ कर सकते, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते जहां से भी आ जाए, क्योंकि ये सारा धोखा होता है, झूठ होता है, बातिल है। फअल्क़िया अस्सहरतु सुज्जदन, अच्छा अब जू ही ये हुआ कि उन्होंने डाला अपना आसा तो वो इतना बड़ा सांप बन गया, और जितनी सांप थे छोटे छोटे नजर आ रहे, वो क्या थे सांप तो थे ही नहीं, रस्सियां और लाठियां ही थी, ऐसे हिलती भी नजर आ रही थी सांपों की तरह, तो वो तो सारे को निगल गया। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया। तो अब जादूगरों को तो पहले ही थोड़ा सा वो हो गया था ना एक दिल के अंदर ये बात के हो सकता है ये सच्ची हो, वो फौरन सजदे में गिर गए। कालू और कहने लगे, आमन्ना भी रब्बी हारून व मूसा, हम ईमान ले आए रब्बे हारून और मूसा अलैहिस्सलाम की। अब होना तो ये चाहिए था कि फैसला तो हो गया कौन जीता है और कौन हारा है। ये ना सिर्फ के नाकाम हो गए थे जादूगर बल्कि वो आगे से सजदे में भी गिर गए। अब ये इतना बड़ा हजूम ये सारा कुछ देख रहा है मगर असर किसके ऊपर सिर्फ हुआ, इन जादूगरों पे। क्यों उनके ऊपर क्यों सिर्फ असर हुआ, होना तो चाहिए था फिरौन भी गिरता सजदे में। इसलिए कि याद रखें जो जिस फील्ड का माहिर होता है ना या जिस फील्ड को जानता होता है वो ही जान सकता है कि क्या, जैसे हीरे की पहचान जौहरी को है। अब आपके सामने एक चमकता हुआ भी रख लें अगर हीरा रख लें आप समझेंगे ये जो चमक रहा है ये भी हीरा ही है, लेकिन जौहरी को पता है ये हीरा नहीं है। इस तरह बाज दफा देखें आप किसी लेक्चर को सुनने जाते हैं जो इल्म वाला बैठा होता है उसको पता चल जाता है कि ये जो बोलने वाला है कितने पानी में है, इधर उधर के आए बाएं शाएं करने लगा अगर टाइम पास कर रहा है या वाकई इसके पास कोई सब्सटेंस है। जो बाकी लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ हाँ जी बहुत अच्छा लेक्चर बहुत अच्छा दर्स, उनको समझ नहीं होती ना। जो इल्म वाला बैठा हुआ जाएगा उसको 1 मिनट में समझ आ जाएगी कि ये जो बोलने वाला है ये कुछ है भी कि ऐसे ही है। इसी तरह वो जादूगर थे आखिर, उनको 1 मिनट में पता चल गया कि ये जादू है ही नहीं। उन्होंने अपनी भी रस्सियां और लाठियां डाली थी, उनको ये पता है कि जादू क्या चीज होती है और जादू की एक्सटेंट क्या है, किस हद तक जा सकता है जादू। उन्होंने देखा ये जादू है ही नहीं, ये तो वाकई मौजा है, अब क्या शक रह गया सा। लेकिन फिरौन तो फिर भी ना माना, ये सद्दे में गिर गया। अब ये बड़े बड़े जादूगर थे, ये बहुत कोई छोटी मोटी चीजें नहीं थी, मिस्र में वैसे ही जादू का बहुत जोर था और ये भी कोई माहिर जादूगर ही थे जो फिरौन के लिए आए थे, छोटों को थोड़ी लेकर आना था उसने। तो जो ही उनके आगे हक खुला उन्होंने फौरन सजदे में सर डाल दिया और फौरन ये ऐलान कर दिया कि हम ईमान लाए हैं हारून के रब पे और मूसा के रब पे। हारून का नाम पहले क्यों लिया और मूसा का बाद में क्यों, इसलिए कि हो सकता था फिरौन ये कह दे कि मूसा का रब तो मैं हूं, मैंने ही पाला है मूसा अलैहिस्सलाम को, फरमाया जो रब है हारून का और मूसा का। और अब फिरौन की बड़ी सुबकी हुई, बड़ी देखें शर्मिंदगी की बात है ना कि इतना बड़ा बादशाह और इतनी डींगे मारी नहीं और इतना हम कर लो जो दिन दिन लेकर आना है और हम उस दिन तुम्हारा मुकाबला करेंगे और भागने की जरूरत नहीं और इतनी बातें और इतना बड़ा इसका रोब और दबदबा और शान, और अब क्या है सबके सामने हार गया। अब उसने कुछ तो कहना था ना, फिर उसने एक दाव चला, फिर एक और तरीका उसने किया। और जब कोई हार जाता है ना तो फिर यही कहता है धांधली हो गई जी हमारे साथ धांधली हो गई, पहले मिले हुए थे इनके साथ तो फलाम मिला हुआ है फलाम मिला हुआ। तो उसने कहा काला आमन तुम लहू कबला अन आदन लकुम, तुम इसके ऊपर ईमान ले आए हो इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत दूं, यानी मेरी इजाजत के बगैर ये कैसे हो सकता है तुम मेरी राया होकर इसके ऊपर ईमान ले आए। इन्नहु लकबीरुकुम, असल में बात यह कि तुम्हारा ये बड़ा है अल्लदी अल्लमकुम सिहर, जिसने तुम्हें सिहर सिखाया है, जादू सिखाने वाला तुम्हारा उस्ताद है ये, असल तुम इसी के चेले हो इसके ही शागिर्द हो। अब देखें इसी को तो फिरौनियत कहते हैं ना, हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी जो जालिम और जाबिर है ना वो कहते हैं इसी किस्म की बातें, हमारी इजाजत के बगैर कैसे ही हो जाए, हमें पूछे बगैर कैसे हो, हम मैं जो हुक्मरान है हम मैं जो सब करने वाले हैं और ये तो सब मिले हुए आपस के अंदर। इसलिए देखे ना इसीलिए फिरौन ठीक है एक बादशाह तो था लेकिन फिरौनियत जो है ना वो आज भी खत्म नहीं हुई। फिरौनियत एक रवैया है जो फिरौन के अंदर जो उसका बिहेवियर था ना वो आज भी जिंदा है बिहेवियर में। हुक्मरान खत्म हो गया वो बादशाह खत्म हो गया मगर फिरौनियत खत्म नहीं हुई। वो जुल्म, वो जबर, वो लोगों के ऊपर हाकमियत है, अपनी धौंस जमाना। ये लोग अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, अपना दीन भी खुद चूज नहीं कर सकते, वो भी पूछना है। और आज दुनिया के अंदर कितनी जगहों के ऊपर ऐसा, जहां पर सिर्फ इस वजह से सताया जाता है कि आपका दीन ये क्यों है। और सिर्फ उनको ही क्या कहे, जो किसी जगह पे भी बॉस बन जाता है, अगर वो इंसाफ पे नहीं है और उसमें खुदा खौफी नहीं है, तो उसमें फिरौनियत आ जाती है। चाहे वो घर की कोई औरत ही क्यों ना हो, उसमें भी फिरौनियत आ जाती है अगर खुदा खौफी नहीं। असल तो चीज खुदा खौफी है जो इंसान को सीधा रखती है, वरना फिरौन बनने में तो ये जरा भी देर नहीं लगती। जिसको जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, जिसको जहां कोई इख्तियार मिल गया, अथॉरिटी मिल गई, कुर्सी मिल गई, उसने कहा मैं ही आज सबसे बड़ी चीज हूं, वो फिरौन बन जाता है। चाहे वो एक छोटी सी कुर्सी क्यों ना हो, एक क्लर्क का ओहदा हो, एक वो क्योंकि गेट पे जो कोई गार्ड है खड़ा हुआ, चाहे वो ही हो। जब खुदा खौफी नहीं होती ना, तो एक घर में रहने वाली औरत भी फिरौनियत का सा रवैया रखती है। फिर मैं, मेरी इजाजत, मेरा घर, मेरे के, मैं किसी की क्या मिजाल है वो मेरे आगे को सर उठाए। उसने कहा तुम तो आपस में मिले हुए हो। अब देखे सारे लोगों को भी तो उसने कुछ बताना था ना, लोग भी, ये ना होता कि सारे भाई ये भी ये जादूगरों को देख के ये भी कहीं ईमान ना ले आए, तो ताकि उनको कंफ्यूज कर दिया जाए। आम आवाम जो होती है वो तो इतनी सोच में पड़ती ही नहीं, वो तो जो उनको जिधर को लगा लेता है उसके पीछे ना भेड़ बकरियों की तरह चल पड़ती। तो अब वो फौरन एकदम इम्प्रेस हो गए थे ना सब लोग देख के, तो ये ना हो कि कहीं ये ईमान ले आए, ये भी कहीं सोचना ना शुरू कर दे। तो उसने ऐसा चाल ऐसी चली, ऐसा उनको कंफ्यूज किया कि उनके भी दिल में ख्याल आने शुरू हो गए, वाकई पता नहीं शायद ये आपस में मिले ही हुए थे और ये सारा ही नूरा कुश्ती थी, ये तो इनकी मिली भगत है। ठीक है, फला उकत्ती अन्ना अईदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, तो अलबत्ता मैं जरूर काट डालूंगा तुम्हारे हाथों को और तुम्हारे पैरों को, खिलाफ सिमत से, यानी मुखालिफ सिमत से मतलब क्या, राइट हैंड और लेफ्ट पैर काट दूंगा, या लेफ्ट हैंड और राइट पैर काट दूंगा, मुखालिफ से ज्यादा, ताकि और अजियत देने के लिए ना। वाला उसल्ली बनना को, वैसे ही किसी को कह दिया जाएगा कि वो गोली मार देगा या कुछ, अब वो एक अलग चीज होती है, लेकिन मैं ऐसे करूंगा कि मैं तुम्हें सलीब दूंगा, यानी ये सूली पे चढ़ाना ना, ये फिरौन से शुरू हुआ कि सूली दी जाए, तो मैं सूली पे चढ़ा दूंगा तुमको। फी जुजुअ नखल, खजूर के तने के साथ, वला तालमुन्ना, और अलबत्ता तुम जरूर जान जाओगे, तुम्हें अच्छी तरह समझ आ जाएगी, अयुना अशद्दु अज़ाबं व अबका, कौन हम में से ज्यादा शदीद है अजाब देने में और बाकी रहने वाली में, ज्यादा देर पा, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग कौन है अजाब में। अब देखें ये वाली जो बात है, सजाएं तो कहीं, जो भी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास फिर दलील नहीं होती ना, वो धमकियों पे उतर आते हैं, देखना हम तुम्हारे साथ करते क्या है, देखे तुम्हें, हमें तुम्हें हम मजा चखाएंगे, अब तुम्हें हम ऐसे कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हें फलां। अब एक तो ये बात कही, दूसरी लास्ट बात पे आप गौर करें कि जरूर जान लोगे कौन हम में से ज्यादा है अजाब देने में सख्त और अजाब देने में देर पा। ये सिर्फ जादूगरों को नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये अल्लाह ताला को चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बताया था ना कि अजाब आ जाएगा अगर ऐसे किया, और अल्लाह का अजाब बड़ा शदीद है और बाकी रहने वाला और ऐसे है, तो वो कहता है अब पता चल जाएगा किसका अजाब ज्यादा शदीद है, पता चल जाएगा किसका अजाब ज्यादा देर रहने वाला। अस्तग़फिरुल्लाह। अब ये जो किरदार अब आगे आप देखते हैं ना जादूगरों का, जिसके बारे में इब्ने अब्बास फरमाते हैं ना कि जो सुबह को जादूगर थे और शाम को अल्लाह के वली और शुहदा बन गए, इतने मिसाली इनकी शख्सियात हैं और इनका किस्सा यहाँ पे अब दोबारा आया है। पहले सूरह आराफ में भी हम पढ़ चुके हैं। ये आम ही लोग थे, कोई पैगंबर नहीं है, लेकिन इन आम लोगों का ईमान कैसा है? और जब ईमान आ जाता है तो इंसान क्या बन जाता है, उसके अंदर क्या चेंज आ जाती है, उसका दिमाग कैसा हो जाता है, उसका अकीदा कैसा हो जाता है, उसका तर्ज़ अमल कैसा हो जाता है, उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है, आपको इन आयात से पता चलेगा, उनकी बातों से पता चलेगा। अभी 2 मिनट पहले वो मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने खड़े हुए थे, और 2 मिनट बाद उनके ईमान की हालत क्या है? जाहिर है इससे पहले उन्होंने कुछ ना कुछ तो बातें सुनी ही होंगी, मूसा अलैहिस्सलाम इतने अरसे तबलीग कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो उनके कानों में पड़ा ही होगा। और फिर मुकाबला करने से पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको तबलीग की। तो जो ही ईमान आया, क्योंकि आप हैरान होंगे कि उन्होंने ये बातें सीख कहां से ली, जो ही ईमान आया तो कैसा ईमान था कि उनकी दिल की कैफियत ही बदल गई, किरदार ही बदल गए, इतना हौसला आ गया उनके अंदर, इतने बहादुर बन गए वो, पूरा जैसे लगता है ना शख्सियत ही बदल गया, पूरी पर्सनालिटी बदल गई। ईमान तो हमारे पास भी है, हम तो स्ट्रगल ही करते रहते हैं, क्योंकि ईमान उस पाए का नहीं है, उस लेवल का नहीं है, उस वो स्टैंडर्ड नहीं है हमारे ईमान का जैसा होना चाहिए। आप देखेंगे कि जब इनको ईमान की दौलत मिली ना, वाकई दौलत है ईमान, क्योंकि जब इनको ये दौलत मिली तो आप देखेंगे कि इनकी बातें ही बदल गई। इससे पहले हम सूरह आराफ में देख चुके हैं, इन्होंने फिरौन से पूछा था कि फिरौन फिर हमें क्या दोगे जब हम जीत जाएंगे? तो उसने कहा मैं तुम्हें मुकर्रबीन में शामिल कर लूंगा, बड़ा ही नाम इकराम तुम्हें दूंगा। इससे पहले इनाम और उसके चक्रों में पड़े हुए, और उसके बाद अब इनको कोई ईमान का शौक नहीं रहा, सॉरी इनाम का शौक नहीं रहा, कुछ उनको दौलत का नहीं रहा, कुछ उनको फिरौन के दरबार में बड़ी पोजीशन हासिल करने का नहीं रहा, कोई परवाह नहीं रही। क्या कर देता है ईमान इंसान को, कैसे इंसान की जिंदगी को बदल देता, हर उसके रवैये, उसकी प्रायोरिटीज को बदल देता, उसकी तरजीहात ही बदल जाती, सोचने का अंदाज ही बदल जाता है। हम भी तो ईमान लाए हुए हैं और अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, हमारी क्यों नहीं सोचें बदलती, हमारी क्यों नहीं जिंदगियां बदलती, हमारे सिर्फ दावे हैं ईमान के, इसलिए कि ईमान हमारे अंदर नहीं दाखिल हुआ। अभी मुंह से जुबान से बातें हैं, उन्होंने अगर कहा ना आमन्ना तो वो वाकई ही ईमान लाए, उन्होंने सिर्फ बात नहीं की थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, आप अंदाजा कीजिए। इसलिए मैं आपको कहती हूँ जस्ट लिव दीज आयास, लिव कुरान, ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ के वो अच्छा उनको कर दिया फिर अच्छा, वो ठीक है, वो उनको सूली चढ़ा दिया खत्म हो गया सबक, इतनी बात नहीं है। इमेजिन करें, जस्ट उनके शूज में आके देखें, कोई बहुत ही बड़ी बात होगी जिसपे के कोई खड़ा रह सके, ये सारी बातें सुनने के बाद ना, कि मैं ऐसे तुम्हारे कटवाऊंगा हाथ पैर और तुम्हें सूली चढ़ाऊंगा, तुम्हें लग पता चलेगा कि किसका अजाब ज्यादा है। ये बातें सुननी आसान नहीं है, किसी को कह दिया जाए आपको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा, वहां पे ये आपके साथ होगा, ये होगा, ऐसे चैम्बर्स में डाल दिया जाएगा, ऐसी काल कोठड़ी में बंद कर दिया जाएगा, ऐसे कर, उस बंदे की हालत क्या रहेगी? पर क्या बात थी कि वो टसे मस नहीं, वो फौरन नहीं फिरौन के पैरों में नहीं पड़ गए कि गलती हो गई माई बाप हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं आइंदा कभी कहेंगे, हमसे गलती हो गई, हम कैरे डवे हो गए थे, मुंह से निकल गया था, वो हमें माफ कर दीजिए आप, नहीं, क्या क्या चीज थी, कहां से उनके पास ये स्ट्रेंथ आई, कहां से कुव्वत आ गई थी, थोड़ी देर पहले तो नहीं थी, कहां से आई, क्या चीज उनके अंदर आई जिसने ये कुव्वत पैदा की? ईमान, इसका मतलब ईमान में कुव्वत होती है? हाँ, ईमान में इतनी कुव्वत होती है कि इंसान फिर खड़ा हो जाता है जाबिर जालिम के आगे भी, और कलमा हक बोल देता है। ईमान में ये कुव्वत होती है कि इंसान निडर हो जाता है, ईमान में ये कुव्वत होती है कि हर चीज उसकी बदल जाती है, उसकी प्रायोरिटीज ही बदल जाती है, ईमान में ये कुव्वत होती है कि दुनिया की जिंदगी फिर कुछ भी नहीं लगती, फिर हर चीज आखरत लगने लगती है, ईमान में ये कुव्वत होती है कि इंसान को किसी चीज का लालच नहीं रहता जो इस दुनिया में, उसको लालच रहता है तो वो आखिरत की जिंदगी का होता है। ईमान वो चीज है कि जब आती है ना तो इंसान को अपने गुनाह ही बड़े लगने लगते हैं, अपनी गलतियां बड़ी लगने लगती हैं। ईमान वो चीज होती है कि फिर सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की रह जाती कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, इससे बड़ी कोई फिक्र नहीं रह जाती। सब फिक्रें पीछे, अब इनको ये नहीं फिक्र। अब सोचिए ना, उन्होंने नहीं कभी देखे होंगे कि लोग कैसे सूली पे चढ़ते हैं, पता है आपको, कील डाल देते थे हाथों में और पैरों में, कील डाल के उसके साथ नेल कर देते, तो वहीं पड़े रहते थे, पड़े रहते थे। क्या वो बेचारे रोते होंगे, क्या करते होंगे, यानी तड़पा तड़पा के मारना, उसके ऊपर उन पोल्स पे लटके रहते थे, लोग भी देखते रहे, उनके लिए भी इबरत बने, और वहीं पे धूप में भूख और प्यास के साथ तड़प तड़प के मर जाए। एक गोली किसी को मार देना वो भी एक होता है, चलो वो वहीं पे उसी वक्त मर गया, तड़पा तो नहीं ना, लेकिन वो क्या अजियतनाक तरीका उसने कहा कि मैं उस तरह से तुम्हें मारूंगा, और पहले कटवाऊंगा हाथ पैर ताकि उसकी अजियत अलग हो। अस्तग़फिरुल्लाह, वो आगे से क्या कहते। यहाँ पे तो छोटा सी बात सुन के ना लोग डर जाते हैं, कहते हैं हाय किसी का हिजाब खींच लिया था, लो छोड़ो हमारे हिजाब, आज से हमने हिजाब नहीं लेना, हाय मुसलमानों को तो जॉब्स नहीं दे रहे, और छोड़ो छोड़ो हम तो अपना नाम ही कुछ जॉन जैक कुछ और रॉबर्ट रख लेते हैं ताकि किसी को पता ही ना चले क्या मुसलमान। ओ अच्छा पता चला कि मुसलमानों की दुकानों को लूट रहे हैं, मुसलमानों का तो कोई वाला चीज सब ही निकाल दो, हम नजर ही ना आए मुसलमान। इतनी इतनी छोटी चीजों के ऊपर इतनी हकीर दुनिया के पीछे सब छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, किसी को ना पहचानो मैं मुसलमान हूँ, किसी को ना पता चले, मुसलमान की हर आइडेंटिटी मैं छोड़ दू। और यहाँ पे वो सीना ठोक के कहते हैं कालू लन सिरका आला मा जाअना मिनल बय्यिनात, हम हरगिज नहीं तरजीह देंगे उसके ऊपर जो आ गया हमारे पास, हमारे पास तो खुली निशानियां आ गई, इससे ज्यादा खुली निशानी क्या होगी, हमारे सामने आ गई। और वो जात जिसने हमें पैदा किया, हम उसके ऊपर किसी को तरजीह नहीं देंगे, ये खुली निशानी हमारे सामने सब कुछ आ गया, और जिस जात ने हमें पैदा किया हम उसके ऊपर किसी और को तरजीह देते हैं, हम ये हरगिज नहीं अब कर सकते, हरगिज लन हरगिज नहीं, अब इसको तो भूल जाए फिरौन। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात उनको समझ आ गई कि अल्लाह पे किसी को तरजीह नहीं देनी, अल्लाह की बात पे किसी को तरजीह नहीं देनी, किसी की हैसियत नहीं है अल्लाह ताला के आगे। अल्लाह अकबर, ईमान ऐसे इंसान को बदल देता है, उसकी तरजीहात बदल जाती है, ये चीजें बड़ी नहीं लगती, अल्लाह की जात बड़ी लगती है। फिर छोटी छोटी बातों पे इंसान अल्लाह को पीछे करके इन चीजों को नहीं पकड़ लेता, फिर अल्लाह की जात को आगे रखता है, तो छोटी छोटी चीज के ऊपर दिल बर्दाश्त नहीं हो जाता, गमजदा नहीं हो जाता, हाय मुझे ये नुकसान हो गया, हाय मुसलमान होने की वजह से मुझे वीजा नहीं मिलेगा, मेरी गाड़ी का नंबर ना नोट कर ले मुझे मस्जिद जाते हुए देख के, मेरे पीछे फलाना ना पड़ जाए, FBI ना पड़ जाए, पुलिस ना पड़ जाए, फलाना ना देख ले, एक्सट्रीमिस्ट लोग ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे। इतने फियर्स, इतने फियर्स इनको क्यों नहीं हुआ, इसलिए कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजीब अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसको लज्जत मिल जाए ना, जिसको ये पता चल जाए कि मेरा रब कौन है, मैं किसकी बंदी हूँ, जो जी जिसकी भी लज्जत है अल्लाह ताला को जानने की, उसकी मारफत की, फिर भी इंसान का दिल बेगाना हो जाता है इन चीजों से, फिर नहीं ये मैटर करती। ये हमारे जैसे लोग हैं जिनके दिल में अल्लाह की बड़ाई ही नहीं, उसकी अजमत ही नहीं, तो हर चीज ही बड़ी लगती है, फिर हर चीज उसके ऊपर मर मिटने लगे हैं। फकदिमा अंतकाद है, कर ले फिरौन, करना है जो कर ले तूने, जो फैसला तूने करना है कर ले, इन्नमा तकदी हादी हयात दुनिया, तू बस तो ही इस दुनिया की जिंदगी का ही फैसला कर सकता है, इससे आगे तो तेरा कोई बस नहीं है, यही कर सकता ना, मौत दे दे, अजियतनाक मौत दे दे, तड़पा तड़पा के मारे, लेकिन बस उतनी देर तक ही अजियत दे सकता है, उतने ही तेरी सजाएं भी होंगी जितना ये दुनिया की जिंदगी है, जितनी सांस। देखें आप इसमें कितना बड़ा लेसन है, इस दीन की खातिर अगर इंसान को जरा कुर्बानी देनी पड़ती है, कुछ जाता है उसका, तो ये नुकसान कितनी देर का होगा, कितनी देर का, सिर्फ इतनी जिंदगी का ही होगा ना। अब तो बात पूरी जिंदगी के लिए भी नहीं होते, चलो साल का हो गया, 2 साल का हो गया, चल, लेकिन आखिर तो ये जिंदगी खत्म हो जानी है, उसके बाद के तो नहीं है ना। लेकिन इंसान इस नुकसान के ऊपर इतना तड़पता है, इतना परेशान होता है, तो उसको लगता है तो सब कुछ लूट गया। इतने ये जो जादूगर है ना, इनका जो कैरेक्टर है, तो जाहिर है ये तो सच्ची कहानी है, सच्ची बात है, ये इससे सच्ची बात नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने एक एक उनकी बात को कुरान की जीनत बना दिया, एक एक उनके डायलॉग को। ये मेरे फेवरेट किरदार है कुरान में, कई होते हैं ना किरदार आपके जो आपके फेवरेट होते हैं, ये इसलिए मेरे फेवरेट है कि अल्लाह ताला दिखाता है कैसे कोई इंसान की काया पलट जाती है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी ऐसे बदल दे जो बिल्कुल मुर्दा है, मट्टी है बिल्कुल, अल्लाह इनमें जान डाल दे, इनको ऐसे जिंदा कर दे जैसे ये जादूगरों के दिल जिंदा होगा, जैसे ये मुर्दा थे ये जिंदा होगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे कर दे, कैसे ये अल्लाह के प्यारे बनकर, कैसे इनको जुर्रत भी आ गई बोलने की फिरौन के आगे, कहते हैं तूने करना जो फैसला कर दे ठीक है, तो तू ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, यहीं तक दुनिया की जिंदगी तक ही कुछ हमारा नुकसान कर सकता है ना। इनकी नजरों में फिरौन कितना छोटा हो गया कि ना कोई डर है ना खौफ है, जब ईमान आ जाता है तो ऐसे ही होता है, इन्ना आमन्ना भी रब्बिना, जब देखे उनको फिक्र क्या लग गई, ये नहीं फिक्र उनको लगी हुई कि फिरौन क्या करेगा, भाई अब कितनी पेनफुल होगी ये मौत, क्या कह रहे हैं, इन्ना आमन्ना भी रब्बिना, हम ईमान ले आए हैं अपने रब पर, लिया फिर अला ना खता या ना, कि वो बख्श दे बस हमारी खताएं, बस वो हमें माफ कर दे हमसे जो कुछ हो गया, कितनी बड़ी फिक्र बन गई उनको। ये नहीं हुआ कि अब हमारा तो सारा बिजनेस ही खत्म हो गया, आए हमारे बच्चों को अब क्या होगा, अब हम मार देगा ये तो फिर ऑन, ये नहीं उनको हुआ, उनको ये नहीं हुआ कि अभी तो हमारे पास फ्यूचर पड़ा हुआ है, अभी तो हमने बड़ी, हमें तो तरक्कियां मिलनी थी, ये क्या हो गया, अब हमारी सजा हमें तजवीज की जा रही, हमने तो बड़ा ओहदा लेना था, घर में भी हम यही बता के आए थे कि आज तो बस समझ लो कि उसके बाद हम पता नहीं कितनी बड़ी पोजीशन में होंगे, फिक्र ही ना करो, क्या इनके बीवी बच्चे नहीं होंगे, अब ऐसे ही आप पढ़ रहे हैं कहां से, कहीं एलियन उतर के आ गए थे, कि घर वाले तो होंगे ना, कोई रिश्तेदार होंगे, कोई दोस्त अहबाब होंगे, उस जमाने की भी अपनी पंप एंड शो थी, फिरौन का इकतदार क्या बात क्या चीज थी, कितनी शो थी उसमें भी, वो सब चीजें थी जो कि इंसान को अट्रैक्ट करती हैं, फिर उनको ये क्यों इतनी फिक्र पड़ गई, इसलिए कि जब ईमान आता है ना, अपनी गलतियां ना बहुत बड़ी लगने लगती, छोटी नहीं लगती, इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मोमिन को ना अपना गुनाह ऐसे लगता है जैसे वो पहाड़ के नीचे बैठा हुआ, पहाड़ किसी वक्त उसके ऊपर आके गिर जाए, और मुनाफिक को अपना गुनाह ऐसे लगता है जैसे नाक पे मक्खी बैठी हो, आप ऐसे उसको उड़ा देते हैं ना, कोई चीज ही नहीं है। एक सहाबी रसूल कहते हैं ना कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिन चीजों को इतना बड़ा, जिन बातों को इतना बड़ा गुनाह समझते थे, वो अपने जमाने में कह रहे थे सर, असर अनस रजिला तालन की शायद बात है ये, कि वो फरमाते हैं कि तुम अपने जमाने में उनको कुछ भी नहीं समझते, वो उस जमाने में कह रहे हैं, सोचे जो भी बहुत अच्छा जमाना था, खैरल कुरून में से था वो जमाना, उसको वो कह रहे हैं कि तुम तो आज को ये इन बातों को जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में हम बहुत बड़े गुनाह समझते थे, बहुत बड़ी बात समझते थे, तुम इनको कुछ समझते नहीं, इनको छोटी बातें समझते, तो आज आ जाए तो वो तो कोई चीज गुनाह है ही नहीं, आज तो सारा ही जायज है, तो सब भी करते हैं, ये कौन सी ऐसी बात, सब ठीक है, सब चलता है, तो वो उनको अपने गुनाह याद आने लगे। अव्वल तो ये मानना ही बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए जिनमें तकब्बुर होता है कि हमने, हमसे भी कोई गलती हो सकती, माफी मांगना तो दूर की बात है, हम कोई गलत कर सकते हैं, हम तो नहीं कोई गलती करते, मैं इतनी भी गुनाहगार नहीं हूं, हम कहते हैं इससे पता चलता है कि क्या हमारे हालात हैं, मैं इतनी भी गुनाहगार नहीं हूं, तो कितनी है, बहुत थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, तो फिर तो कोई माफी की जरूरत ही नहीं आपको। ताला हमें माफ कर दे, इन्ना आमन्ना भी रब्बी ना, ईमान लाए अपने रब पे ताकि वो बख्श दे हमारी खताओं को। हम फिर भी सस्ते में छूट जाएंगे अगर तू हमें सजा भी दे दे फिरौन, तो अगर हमें माफी मिल जाती है ना तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। माफी बस हमें मिल जाए, मसला ये नहीं कि तू हमें क्या सजा देगा, और मसला ये नहीं कि अब हमें मौत आ जानी है, हम इस पर रोना शुरू कर दें, रोए पिटे हाय मौत, हाय मरने लगे हैं, हाय फलाना को बुला लो, उससे मिलने, उससे करने, वसीयतें करने, ये करते। हमें तो फिक्र है कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे, जो आज मरते मरते भी नहीं फिक्र होती, हंसते मरते भी फिक्र होती है कि हाय बच्चों को नाम जायदादें लिख दें, फलाने के नाम जायदाद लिख दें, फलाने से ले लेना, फलान का कर लेना, यही होती। वमा अकरहतना अलैहि मिनस्सिहर, और जो तूने मजबूर किया हमको जादू की वजह से। इसके दो मानी है, एक ये माना कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि मूसा अलैहि सलाम से नहीं मुकाबला करना चाहिए, तूने हमें मजबूर किया कि नहीं करो, तो तनाजा खड़ा हो गया था नैन में। और दूसरा ये कि फिरौन ने मैंडेटरी किया हुआ था कि वहां पे लाजिम है कि सारे लोग जो है ना अपने बच्चों को जादू की तालीम दिया करें, तो तूने हमें, तो कई वालदैन नहीं देना चाहते होंगे, तो तूने हमें मजबूर किया इसकी तालीम। तो जो हमने ये भी गलती की है इसके ऊपर भी, जो पे तूने हमें मजबूर किया इसमें भी अल्लाह हमें माफ कर दे। नहीं तो देखे कितनी शिद्दत से एहसास है ना अपनी गलतियों का, वरना कहते हैं हम ईमान ले आए, वैसे ही ईमान से तो सारी गलतियां माफ हो ही जाती हैं, तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। अब जब ईमान आया तो अल्लाह के आगे बड़े होने की ज्यादा फिक्र है, फिरौन के आगे नहीं। वल्लाहु खैरुन व अबका, तू कहता है तेरा अजाब शदीद है और अबका है, अल्लाह खैर और अबका, इसके दो माने, एक अल्लाह की जात बेहतर है और बाकी रहने वाली, और दूसरी माना क्या है कि अल्लाह ताला से जो खैर मिलनी है, जो सवाब है, जो जजा है, वो भी बेहतर है और बाकी रहने वाली, जो उसकी जन्नत है या उसके सवाब है या उसकी जजाएं हैं, वो बेहतर और बाकी रहने वाली। अल्लाह ताला फरमाता है ना, वल आखिरत खैरुन व अबका, आखिरत बेहतर भी और बाकी रहने वाली। बल तो उसी रून अल हयात दुनिया, तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो जबकि आखिरत बेहतर भी और बाकी रहने वाली। तो उसका जवाब देते हैं जो उसने बात कही थी, और फिर कहते हैं तेरे सामने फिरौन क्या मुजरिम बन के, इससे क्या फर्क पड़ता है, तूने जो हमें आज मुजरिम बना दिया है। इन्नहु मैयाती रब्बहु मुजरिमन फइन्ना लहू जहन्नम, जो अल्लाह के पास अपने रब के पास मुजरिम बन के पेश हो गया ना वहां पे आया, तो उसके लिए तो जहन्नम है। ला यमूतु फीहा वला यहया, ये दुनिया की सजाएं क्या सजाएं हैं, चाहे दुनिया में कितनी भी सजा दे लो, कितनी भी सजा हो जाए, किसी को कितना भी कोई नुकसान पहुंचा दे, किसी को कितना भी कोई टॉर्चर कर दे, आखिर वो खत्म हो जाएगी मौत के आने के साथ, लेकिन जहन्नुम की सजा ऐसी है कि वहां पे ना जिंदगी और ना मौत है, कि इंसान का हाल ये होगा कि उसको इतनी तकलीफ होगी कि ऐसे लगेगा अभी मौत आई, अभी मेरी जान निकलने लगी, लेकिन जान निकलेगी भी तो नहीं, जान भी तो फंसी होगी, जान भी तो नहीं निकलेगी, तो ना उसको जिंदगी कह सकते हैं कि ये जिंदा है, ना उसको मौत कह सकते, वो मरा ही नहीं है। तो वहां पे उसकी बहुत ही खौफनाक बात जहन्नुम की है। اللهم أجرنا من النار، कि वहां पे मौत नहीं है। तो दुनिया में कोई भी सजाएं हो, किसी को बीमारी भी हो जाए तो वो मर जाता है, तो उसकी तकलीफ खत्म हो जाती, इंसान बड़े से बड़े सदमे में भी नहीं हो ना, तो ये सोचता है कि मर जाऊंगा तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, मेरे मरने के साथ ही कहता है मर जाऊंगा सब चीज खत्म। लेकिन वो सजा कैसी है जिस जो उसमें चला गया, फिर मौत को पुकारेंगे, आए मौत मौत आ जा, मौत नहीं आएगी। मौत को तो अल्लाह ताला मौत दे देगा, वो कहां से आएगी, मौत तो अल्लाह की मखलूक है। तो इतनी तकलीफ शदीद के जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, उस तकलीफ में होते हुए भी मौत नहीं होगी, तो उनको कितनी रियलाइजेशन हो गई है कि मैं अल्लाह के आगे मुजरिम बन के पेश ना हूं, तू हमें मुजरिम बना दे, सजा दे दे, कुछ कर दे। उस सजा का क्या करें जो अल्लाह ताला के आगे मुजरिम कोई बन के चला गया, तो वहां पे तो ये सजा है कि फिर ना जिंदगी है तो ना मौत है। इतनी उनको समझे आ गई, इनको इतना पता चल गया। अल्लाह हू अकबर, कि अब जहन्नुम का खौफ सबसे बढ़ के हो गया कि हम अल्लाह के आगे ना मुजरिम बन के खड़े, अल्लाह के आगे सुरखरू हो जाए। कैसे पैमाने बदल गए, कैसे क्या चीज कामयाबी लग रही है और क्या नाकामी लग रही है। वमई यती ही मुमिनन, और जो आ गया उसके पास मोमिन बन के, ईमान ला के। देखिए पहले क्या बताया, जो अपने रब के सामने मुजरिम बन के खड़ा हुआ। अल्लाह ताला हमें इसे माफ रखे कि हम कभी भी ऐसे कोई दिन आए कि हम अपने रब के आगे मुजरिम बन के खड़े। तो वो जो अपने रब के पास ईमान की हालत में खड़ा हुआ, कद आमिल सोलेहात, उसने अमल किए नेक, और वो ऐसा था कि दुनिया से नेकी करके गया। देखे सुभान अल्लाह, उनको भी ये पता है कि ईमान काफी नहीं है सिर्फ कि हम ईमान ले आए, हम ईमान ले आए, उसके बाद करके कुछ दिखाया कि नहीं, तो इन्होंने क्या नेक अमल किया। इनका अभी तक कोई नेक अमल देखा आपने? हाँ, इन्होंने सजदा किया और फिर अब तबलीग कर रहे हैं, और फिर अल्लाह के ऊपर जो यकीन इन्होंने दिखाया, और फिर जम गए अपने ईमान के ऊपर, ये सब साले अमल ही तो है। तो कहते हैं जो अल्लाह के पास ईमान की हालत में आ गया, यानी उसके आगे हाजिर हुआ, क्योंकि हाजिर तो मैंने भी और आपने भी, हम सबने होना। लेकिन असल बात यह कि किस हालत में हम अल्लाह के आगे हाजिर होते हैं, हमारी क्या हालत होती है उस वक्त, ईमान और उसके साथ नेक अमाल के गठड़ियां की गठड़ियां, या अल्लाह ना करे कि मुजरिम की शक्ल। कि जैसे कोई मुजरिम होता है ना, पुलिस से भागता है भागता है, मुझे पकड़ ना ले, एक दिन तो पकड़ा जाता है। इस तरह बाज अल्लाह के मुजरिम होते हैं, वो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, इसलिए अल्लाह से भागते हैं भागते हैं। लेकिन कब तक भागेंगे, आज तो अल्लाह ढील दे देता है, अल्लाह सुभान तआला पूछता नहीं है, पकड़ता नहीं है, लेकिन एक दिन तो पकड़ लेगा ना, फिर जब उसके सामने खड़े होंगे तो अब तो कहीं भागना नहीं, अब तो पैर ही नहीं हिलेंगे वहां से। तो दुनिया में भी कानून होता है और कानून में मुजरिमों को सजा मिलती है, और जो अल्लाह की अदालत होगी वहां की जब सजा होगी किसी मुजरिम को, तो क्या होगा, उसकी सजाएं भी बड़ी हैं और उसकी जजाएं भी बड़ी हैं, दोनों ही चीजें बहुत बड़ी हैं। इसलिए जो ईमान ला के सालिह अमल करे, वहां पे एक मुजरिम होना काफी था, यहाँ पे दो चीजें जरूरी हैं, ईमान, सिर्फ ईमान नहीं सालिह अमल भी, जिस अमल से हम डरते हैं और बचते हैं और कहते हैं हमसे नहीं अमल होता, इसके बगैर गुजारा नहीं है, याद रखें। सिर्फ एक दफा कलमा पढ़ लिया वो ही काफी है, ये नहीं है। फउलाई का, ये लोग हैं, लहुमुद दरजात, उनके लिए है दरजात अलउला, बुलंद दर्जे, अल्लाह के हाँ उनके लिए बहुत बुलंद दर्जात है, जन्नत आदनिन। अब देखिए उनको कैसे ये बातें आ गई, जन्नत का भी पता है, जन्नत हमेश की सदा बहार, आदम की जन्नत, आदम जन्नत का एक नाम भी है और सदा बहार के लिए भी मतलब है, तजरी मिन तहतिहा अलअनहारु खालिदीन फीहा, ऐसी जन्नत है जो कभी खत्म थोड़ी होना, इनके नीचे नहरें बहती होंगी और हमेशा रहने वाले होंगे उसमें। वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, ये बदला है उसके लिए जो तज़क्का, तज़किया करे, पाकी इख्तियार करे। किस चीज से पाकी इसकी, हार अपनी जिंदगी के हर गोशे में पाकीज की, यानी उसकी पूरी लाइफ जो है ना वो पाकीजा जिंदगी, बातचीत करने से लेके अकीदा, लाइफस्टाइल, अमल, उसके जिस्म, उसका माहौल, उसका किरदार, उसका कैरेक्टर, उसकी जो क्वालिटीज है सब पाकी वाली हो, उसका बोलना चालना, उसका उठना बैठना, उसका देखना है पाकीजा नजर हो, उसका सुनना पाकीजा हो, पाकीजा बातें सुनने वाला। तो हर तरह से अंदरूनी बैरूनी, अंदर से भी दिल पाकीजा साफ, गलास्तों से पाक, गंदगियों से पाक, जैसे बाहर जिस्म गंदा हो जाता है, दिल भी तो गंदा हो जाता है हसद से, कीने से, बोझ से, नफरतों से, लालच से, कुफर से, बिद्दतों से, सारी चीजों से दिल भी तो नापाक होता है। तो वो कहते हैं ये जजा उसकी है जिसने पाकीजा जिंदगी गुजारी, जो पाकीजगी इख्तियार करता है। और ये तो पाकीजा हो गए ना। देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा जिहाद जालिम बादशाह के आगे कलमा हक बोलना है, और इन्होंने इतना बड़ा जिहाद कर दिया। ये भी तो साले अमल है इनका। आप कहेंगे इन्होंने कौन सा अभी नमाजें पढ़ ली, कौन से रोजे रख लिए, कौन से इन्होंने अमल कर लिए, नहीं सिर्फ वो ही नहीं है अमल, ये भी अमल। इतना बड़ा जिहाद के इतना जालिम बादशाह, और उसके आगे वो बरमला बोल रहे हैं, सबको तबलीग कर रहे हैं, और उन्हें बता दी कि कौन सी चीज है जो कामयाबी है, कौन सी चीज है जो सबसे बड़ी नाकामी है। तो नाकामी ये नहीं है कि है फिरौन तुम हमें कितनी बड़ी सजा दे दे, नाकामी मैंने आपको पहले भी बताया था, नाकामी सबसे बड़ी ये है कि इंसान की जो आखिरी सांस जो है इस दुनिया के अंदर अल्लाह की नाफरमानी या कुफर की हालत के अंदर निकले। और सबसे बड़ी कामयाबी इस पूरी दुनिया की ये है, ये नहीं कि आप डॉक्टर बन गए, ये नहीं आपका करियर बहुत बड़ा है, ये नहीं कि आपके बिजनेस किस किस कंट्री में है, ये नहीं कि आपके पास जायदादें कितनी है, ये नहीं है कि आपके घर कितने हैं, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके बच्चे कितने कामयाब, कितने बड़े ओहदों पे पहुंच गए। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि मेरी और आपकी आखिरी सांस जो इस दुनिया में निकले वो ईमान के ऊपर निकले, कलमे पे निकले, बस ये कामयाबी। उनको ये बात समझ आ गई थी, इसलिए ही उनके लिए बड़ी चीज नहीं अब सलीब चढ़ाएगा, अब ये करेगा, अब हमें वो करेगा, अब हमें अजाब ऐसा देगा, अब हमें, इसलिए ये बड़ी चीज नहीं रहेगा। ये बात अल्लाह ताला हमें समझ आ जाए कि हम इस चीज की फिक्र में लगे, हमारी आखिरी सांस ऐसे ही निकले कि तेरा नाम हमारी जुबान पे, तेरा कलमा हमारी जुबान पे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। تلاوة سنة
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى